वस्तुतः केदार के नए काव्य की कुंजी है माझी के पुल से कितनी दूर है माझी के पुल। इसके पहले वह खुद से पूछता है कौन बड़ा है वह जो नदी पर खड़ा है माझी का पुल या जो टंगा है लोगों के अंदर। उसकी कल्पना संवेदना जन्य कल्पना यथार्थ से टकराती है। केवल कल्पना वायवी होती है और केवल यथार्थ संवेदना शून्य। कल्पना और यथार्थ का संघात या तनाव उसकी कविता को जन्म देता है। इसलिए वह कहीं भी क्रांतिकारी या मसीहाई मुद्रा धारण नहीं करता। राग बोध के कवि की प्रकृति के विरुद्ध है यह जानते हुए कि लिखने से कुछ नहीं होगा। मैं लिखना चाहता हूं इससे महज आग की ओर इशारा किया जा सकता है। इस इशारे के कारण फर्क नहीं पड़ता। यथार्थ से उसकी कल्पना टकराती है और कविता फर्क पड़ता है के सम पर पहुंच जाती है। बिना नाम की नदी सूर्य रोटी दुश्मन बैल टमाटर बेचने वाली बुढ़िया आवाज उसकी कल्पना संवेदना जन्य कल्पना यथार्थ से टकराती है। केवल कल्पना वायवी होती है और केवल यथार्थ संवेदना शून्य। कल्पना और यथार्थ का संघात या तनाव उसकी कविता को जन्म देता है। इसलिए वह कहीं भी क्रांतिकारी या महिषाई मुद्रा धारण नहीं करता। राग बोध के कवि की प्रकृति के विरुद्ध है यह जानते हुए कि लिखने से कुछ नहीं होगा। मैं लिखना चाहता हूं इससे महज आग की ओर इशारा किया जा सकता है। इस इशारे के कारण फर्क नहीं पड़ता। यथार्थ से उसकी कल्पना टकराती है और कविता फर्क पड़ता है कि सम पर पहुंच जाती है। बिना नाम की नदी सूर्य रोटी दुश्मन बैल टमाटर बेचने वाली बुढ़िया आवाज एक प्रेम कविता को पढ़कर भीड़ के विरुद्ध एक शब्द जो एक स्त्री को जानता है। आदि रचनाओं में भी वही सवाल है माझी के पुल से कितनी दूर है माझी का पुल। बिना नाम की नदी में नदी यथार्थ है पर कल्पना की टकराहट से जो बिंब उभरते हैं वे नदी का अर्थ बदल देते हैं। वस्तु के अनुरूप स्थान को लोकेट करते हुए वह कहता है और नदी जहां सबसे ज्यादा चुप और अकेली होती है उसी के आजू बाजू फूक आते हैं। भैंसों के आगमन से नदी का गहरे में मिलना हिलना झुमन मियाँ का बंसी लगाना आदि ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव है जो नदी को नया नाम देते हैं। एक प्रेम कविता को पढ़ करके ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव प्रेम कविता के ध्वंस पर नया निर्माण करते हैं। कविता के भीतर और बाहर की स्त्री के द्वंद्वात्मक रिश्ते एक दूसरे को रूपायित भी करते हैं और मुक्त भी। केदार के दो काव्य संग्रह हैं यहाँ से देखो और अकाल में सारस। यहाँ से देखो पिछले काव्य संग्रह की बुनावट भाषा और लय से भिन्न है। कविताओं की संरचना में वैसी जटिलता नहीं है। अर्थ गौरव की दृष्टि से भी जमीन पक रही है के समक्ष नहीं है। फिर भी इसकी कुछ कविताएं टूटा हुआ टूक पानी में घिरे हुए लोग बनारस जानवर सन 47 को याद करते हुए यदि अपनी संवेदना में अत्यंत प्रभावशाली बन पड़ी है। अकाल में सारस उसके काव्य विकास का ऐसा बिंदु है जहां जमीन पक रही है और यहां से देखो कि संरचनाएं घुल मिलकर कविता की नई छवियां उकेरती हैं। इस संग्रह की कविताओं का मूल्य स्वर है जीवन को बचा लेना वह चाहे जहां नहीं मिले। अकाल में डूब को देखकर पिता कहता है अभी बहुत कुछ है अगर बची ही है डूब। अड़ियल सांस में वह कहता है जो बचा रह गया नष्ट होने से जो बचा रह जाता है लोग उसी को कहते हैं जीवन। यह संग्रह उसकी काव्य यात्रा का सहज विकास है। छायावादोत्तर कवियों में केदारनाथ सिंह सबसे अधिक सचेत कवि हैं। वाक और अर्थ दोनों के प्रति दूसरे शब्दों में संरचना और जीवन के प्रति जीवन का इतना वैविध्य प्रतिपत्ति मूलक भाषा का किंचित जटिल किंतु सरस और लयात्मक प्रयोग अन्यत्र कम मिलेगा। कुंवर नारायण 1927 का पहला काव्य संग्रह चक्रव्यूह आधुनिकता की मनोदशा का सूचक है। मैं नवागत वह अजीत अभिमन्यु हूँ प्रारब्ध जिसका गर्भ भी से हो चुका निश्चित। अपरिचित जिंदगी के व्यूह में फेंका हुआ उन्माद बांधी पंक्तियों को तोड़ क्रमशः लक्ष्य तक बढ़ता हुआ जयनाद यह आज की सामाजिकता से घिरे व्यक्ति की एक दी हुई निश्चित स्थिति है। पर व्यक्ति लक्ष्य तक बढ़ेगा ही किंतु इसे कुछ निग्रह के साथ ही स्वीकारा जा सकता है। इन पंक्तियों में अनजाने ही जो अंतर्विरोध आ गया है वह कुंवर नारायण का ही नहीं है अनेक अन्य कवियों का कवियों और युग का भी है। प्रश्न है कि जिसका प्रारब्ध गर्भ में ही निश्चित हो चुका है वह अजित कैसे है? अगर उसकी अजेयता गर्भ में ही निश्चित है जो वह अभिमन्यु कैसे हो सकता है? अभिमन्यु तो लक्ष्य तक पहुंचने से पूर्व मारा जाता है। एक ओर प्रारब्धवादी होना और दूसरी ओर न होना एक साथ संभव नहीं है। इस अंतर विरोध के कारण कवि का मैं कहीं कहता है कि पर मैं प्रकाश का वह अंत केंद्र हूं जिससे गिरने वाली वस्तुओं को छायाएं बदल सकती हैं, तो इसके विरुद्ध कहता है विरुद्धों का सामंजस्य आत्मजयी और परिवेश हम तुम में मिलता है। आत्मजयी एक चर्चित काव्य है। इसमें कठोपनिषद की यम नचिकेता की कहानी आधार रूप में ग्रहण की गई है। नचिकेता का परिवेश भी अभिमन्यु के चक्रव्यूह से कम जटिल नहीं है। नचिकेता अपने ढंग से व्यूह को तोड़कर लक्ष्य तक पहुंच जाता है, पर उसका लक्ष्य क्या है, परिस्थितियां क्या है, लक्ष्य पर पहुंचने की प्रक्रिया क्या है और अंत में उसकी प्रासंगिकता क्या है? वस्तुतः नचिकेता निजी सुख सुविधा से आगे किसी ऐसे मूल्य या बोध की तलाश है कि मर्त्य होते हुए भी मनुष्य की अमर अर्थ में जी सकता है। यह प्रश्न पुराने अर्थ में आध्यात्मिक या रहस्यात्मक न होकर अस्तित्व परक है। इस नचिकेता का अमरत्व सृजनात्मक संभावनाओं के प्रति आस्था की उपलब्धि में नहीं था, किंतु सृजनात्मकता का अर्थ इतना अनिर्णित है कि उसके संबंध में निश्चयात्मक रूप से कुछ कहा नहीं जा सकता। वाजस्रवा भौतिक जीवन का विश्वासी है जो आज का युग है और नचिकेता आत्म के सत्य तक सार्थकता तक पहुंचना चाहता है। वह मृत्यु बोध से आत्मबोध या जीवन बोध पाता है। संपूर्ण जीवन को देकर ही संपूर्ण जीवन को पाया जा सकता है। किसी भी सोचने विचारने वाले व्यक्ति के मन में जिंदगी की सार्थकता का सवाल बराबर उठता रहता है। वाजस्रवा के क्रोध के बाद नचिकेता के सवाल विषादात्मक बन जाते हैं। वे जिनसे पाया नगण्य सुख साधन कुछ दान मिला, दान से अधिक एहसान मिला, वे जिनको प्यार दिया जीवन को खाली कर उन्होंने दया की मुझ पर उपकार किया, वे सब समृद्ध रहे अपने में, लेकिन मैं रीत गया आत्मा को व्यय करके, बदले में केवल एक कुंठा संचय करके प्रलोभनों में काम को उपलक्षण के रूप में लिया गया है। वह जिज्ञासु हो उठता है, धरा धाम सखा बंधु पिता नाम वर्तमान मुझ में है, मुझसे है, मेरे हैं, अनजाने पहचाने माने बेमाने सब मेरे हैं, मैं सबका हूं, लेकिन मैं क्या हूं, मैं क्या हूं, मैं क्या हूं। वह आत्महत्या का प्रयास करता है किंतु बच जाता है। फिर अचेतावस्था में उसे अतीत और भविष्य बोध होता है। इसके बाद जिज्ञासा, श्रेष्ठ का वर्ण, सृजक दृष्टि आदि शीर्षकों के अंतर्गत नचिकेता की अंतर्यात्रा का उल्लेख किया गया है। अंततः वह मुक्ति बोध के सोपान तक पहुंच जाता है। आत्मा की ओर लौटो कि औपनिषदिक विचारधारा इस देश की अपनी विचारधारा बन गई है। हिंदी साहित्य के संत कवियों कबीर दादू आदि में इसे स्पष्टतः देखा जा सकता है। निराला की रचनाओं में भी इसकी प्रतिध्वनि मिलती है। दिनकर की उर्वशी की समस्या को कामाध्यात्म की समस्या कहा जाता है। उर्वशी के पूर्वा की समस्या मानसिक ज्यादा है, उसे काम के अतिरेक का परिणाम भी कहा जा सकता है। वह काम भाव में संन्यास लेता है, किंतु आत्मजय की समस्या जीवन की के एक बुनियादी सवाल को, सार्थकता के सवाल को उठाती है। उर्वशी का कामाध्यात्म रोमांटिक हो गया है। रोमांटिक कामाध्यात्म का अंत पलायन से होता है। आत्मजय का अध्यात्म शंकर अद्वैतवाद में होता है। स्वयं अदृष्ट इसी माया वस्तु को बार बार धारण करूं, इसी भोग सामग्री को ग्रहण करूं, इससे छूटा रहकर अपनी अपूर्व रचना में एक कलाकार ईश्वर की तरह अनुपस्थित अथाह समय से जीऊं, केवल आत्मा अमरत्व और आश्चर्य, यह परिणति नहीं हो पाती। संसार को माया वस्तु के रूप में लेना प्रकारांतर से निवृत्त मार्ग का ही समर्थन है। इसमें संदेह नहीं कि कुंवर नारायण इसके माध्यम में जीवन की जटिलतर समस्याओं और रचनात्मक बोध के विविध आयामों को उठाते हैं, पर इसकी शंकर अद्वैतवादी परिणति इसे निवृत्तवादी बना देती है और काव्य मुक्ति बोध की सीमा में सिमट कर व्यक्ति का निषेधात्मक आत्मबोध बनकर रह जाता है। शमशेर के नए काव्य संग्रह इतने पास अपने की तरह कुंवर नारायण का नया काव्य संग्रह अपने सामने कुछ नया नहीं जोड़ पाता। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना 1927 तीसरे सप्तक के कवि हैं, पर ये केदारनाथ सिंह और कुंवर नारायण की भांति एक तान चेतना की व्याप्ति और गहराई में बैठने वाले कवि नहीं हैं। इनकी शिल्प साधना भी उतनी सटीक और परिपक्व नहीं है, किंतु इनकी कविता में समकालीनता के विविध आयाम उभरते हैं जो इन्हें अपने समकालीनों से अलग कर देते हैं। अब तक 4 काव्य संग्रह काठ की घंटियां, बांस का पुल, एक सुनी नाव और गर्म हवाएं प्रकाशित हो चुके हैं। वे सूखा चिथड़ों की धरती लोहिया के न रहने पर सरकंडे की गाड़ी नए वर्ष पर जैसे समसामयिक सामयिक विषयों पर कविता लिखना अधिक पसंद करते हैं पर समसामयिकता प्राय रचनात्मक स्तर नहीं ग्रहण कर पाती। वह पत्रकारिता के आसपास मडराती रह जाती है। लोहिया के न रहने पर कविता में वे लिखते हैं, लो और तेज हो गया उनका रोजगार जो कहते आ रहे हैं, पैसे लेकर उतार देंगे पार तुम्हारी घन भौहों के बीच की वह गहरी लकीर, अभी भी गड़ी है वहां बल्ली सी जहां अथाह है जल और तेज है धार। कहना न होगा कि बल्ली का रूपक न तो कविता को अनवति दे पाता है और न लोहिया का वर्चस्व उभार पाता है। व्यंग्योक्तियों और प्रेम कविताओं में अपनी भावात्मकता तथा सपाट रोमानियत के कारण वे गहन जीवन बोध से नहीं जुड़ पाते। प्रयाग नारायण त्रिपाठी, मदन वात्स्यायन, कीर्ति चौधरी और विजय देव नारायण शाही तीसरे सप्तक के कवि हैं। मछली घर शाही का काव्य संग्रह है। वे राजनीति में समाजवादी और काव्य में व्यक्ति स्वातंत्र के आग्रही हैं। वे काव्य में कविता की निर्मिति चाहते हैं, व्यक्तित्व की नहीं। गोया कविता और कवि का व्यक्तित्व दोनों सर्वथा अलग अलग वस्तुएं हैं। यही कारण है कि कवि के वक्तव्य और कविता में भी एक अंतराल दिखाई पड़ता है। उनका कहना है कि मैं सत्य के मुख पर ढके हुए हिरण्यमय पात्र को उखाड़ दिया है। यह सत्य सनातन सत्य के निकट है जिसे छूता हुआ इतिहास निकल जाता है। उसकी फैंटेसी मुक्तिबोध का संतरास न व्यक्त कर अज्ञेय के रहस्य को व्यक्त करती है। रहस्यमयता उसकी नियति है क्योंकि तुम्हारी प्रत्यंचा का कोई उपयोग नहीं, क्योंकि तुम्हारे पास दूसरा तीर नहीं है। सप्तकेतर कवि। सप्तकेतर कवियों में सबसे महत्वपूर्ण नाम है श्रीकांत वर्मा। श्रीकांत वर्मा का महत्व उत्तर आधुनिकतावादी प्रवृत्तियों को रेखांकित करने में है। जो लोग अवधारणात्मक फार्मूले में उसकी कविताओं को बांधने की कोशिश करेंगे वे देखेंगे कि कविता फार्मूला नहीं होती। फार्मूला चाहे मार्क्सवाद का हो या अस्तित्ववाद का, किसी कविता में उनका सार हो सकता है, फार्मूला नहीं। उत्तर आधुनिकतावाद आज का यथार्थ है जो सबसे पहले कविता में रूपायित होता है, विशेष रूप से हिंदी के 7वें दशक से 9वें दशक के मध्य तक। यदि इसे और भी विभाजित किया जाए तो उत्तर आधुनिकतावाद की शुरुआत 9वें दशक में ही होती है। श्रीकांत वर्मा के पहले दो काव्य संग्रह दीनारंभ और माया दर्पण एक ही वर्ष में प्रकाशित हुए। दूसरा संग्रह जलाघर 1973 में छपा। इनका महत्व इसीलिए है कि इनकी सीढ़ियों से होकर वह मगध तक पहुंचा। इन संग्रहों में आधुनिकता की हताशा भी है और कुछ कर गुजरने की आकांक्षा भी, पर कुछ कर गुजरने की आकांक्षा मंद पड़ जाती है। माया दर्पण में वह कहता है, कुछ भी होता नहीं, बस कहीं हिल जाती है। जल सागर में भी चाहे राह जनी डाल या क्रांति, उसे केवल गुजर जाना है। मगध में कुछ नहीं होता, स्थायी भाव हो जाता है और कुछ कर गुजरने की मिथ से वह मुक्त हो जाता है। उत्तर छायावाद का सही और सटीक मुहावरा केदारनाथ सिंह की कविता फर्क नहीं पड़ता में मिलेगा। यह युग का मुहावरा है। इसका एहसास करते हुए भी केदार उसके विरुद्ध खड़े होने का प्रयास करते हैं। श्रीकांत वर्मा मगध में फावड़ा को फावड़ा कहने के पक्षधर हैं। मगध एक ओर युगीन व्यवस्था की चीड़फाड़ करता है तो दूसरी ओर अतिशय दिशाहीनता का करुण मर्मस्पर्शी एहसास। वह इतिहास एक विशिष्ट कालखंड, ऐतिहासिक स्थलों और व्यक्तिवाचक नामों को चुनकर उन्हें उछाल देता है, फिर उन्हें मिथ के परिवर्तित कर अपने युग के साथ तथा कुछ प्रश्नों के साथ जोड़ देता है। प्रश्न नहीं तो साहित्य भी क्या। मगध, कौसाम्बी, कपिलवस्तु, उज्जैनी, काशी, मथुरा, वैशाली, कोसल, श्रावस्ती, चंपा, बसंत सेना, अम्बपाली, रोहितास्व, सकटार, इनके बीच गुजरता हुआ वह बार बार प्रश्न पूछता है, पूछो तो किसका है यह सब, रोहितास्व का? तो वह रोहितास्व नहीं हो सकता, और अगर हो भी तो क्या फर्क पड़ेगा। कभी भी लड़ा गया हो महाभारत, क्या फर्क पड़ता है, क्या कुछ फर्क पड़ेगा। अगर मैं कहूं मैं मगध का नहीं अवंती का हूं, फर्क न पड़ने के मुहावरे में युगीन दबाव है। वस्तुतः यह एक प्रश्न है, क्या फर्क पड़ेगा, यह कहकर उसने टालना चाहा सवाल को। लेखक ने इसे उछाल भर दिया है। मगध में प्रश्न ही प्रश्न है। मुख्य प्रश्न है कि तुम कहां जा रहे हो। कोई कहता है कि मैं समय के साथ चल रहा हूं, किंतु इसका कोई अर्थ नहीं है। सवाल यह है कि समय तुम्हें बदल रहा है या तुम समय को बदल रहे हो। घर आ पहुंचने का अर्थ भी व्यर्थ है। सवाल यह है, इसके बाद कहां जाओगे का कोई एक उत्तर नहीं है। कोई कोसल जाना चाहता है, कोई श्रावस्ती, कोई काशी, कोई तक्षशिला, बताया हुआ रास्ता नहीं कहीं नहीं पहुंचता, प्रायः नहीं यही होता है। बताए गए रास्ते वहां नहीं जाते जहां हम पहुंचना चाहते हैं। जब कभी लोग सभी लोग कन्नौज जा रहे हो तो यह प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाता है, कौन है जो कन्नौज नहीं जा रहा है। गडू लिखा, प्रवाह से मुक्त व्यक्ति महत्वपूर्ण है। जब वह कहता है कि कोसल अधिक दिन नहीं टिक सकता, कोसल में विचारों की कमी है, तो बद्ध विचारों वाले अपनी पद्धति की ओर संकेत न पाकर आहत होते हैं, लेकिन वह अनेकांतवादी विचारों का समर्थक है। जाने आने के रास्ते और उतरने चढ़ने की सीढ़ियां काफ्का कासिल हैं, अनिश्चित और निर्देशहीन। यह स्थिति विगत के राजा प्रजा हो या न हो वर्तमान की है। इस तरह की स्थिति में व्यक्ति के होने का सवाल कहीं कहीं जुगनू की तरह टिमक जाता है। उत्तर आधुनिकतावाद के मूलभूत सवालों को इसमें काव्यात्मक स्तर पर उठाया गया है। तुकों का अनावश्यक आग्रह इस संग्रह में प्रायः नहीं है। वह संवाद द्वारा विसंवाद और विसंगति द्वारा मानवीय अस्तित्व की संगति प्रस्तुत करता है। अन्य कवियों में दुष्यंत कुमार उल्लेख्य हैं। वे अपना प्रथम संग्रह सूर्य का स्वागत लेकर काव्य क्षेत्र में आए। एक कंठ विस्पाई काव्य नाटक है। इसमें शिव को निर्व्यक्तिकता से व्यक्तिकता और व्यक्तिकता से निर्व्यक्तिकता की ओर लौटाया गया है। उसकी गजलें भी लोकप्रिय हुई। जगदीश गुप्त के मध्यकालीन रुझानों के बावजूद नएपन के प्रति कम आग्रह नहीं है। मोहभंग की प्रक्रिया और नई दिशाएं, छठे दशक में नई कविता का काव्य आंदोलन अपनी व्यक्तिगतता और आत्मस्थता के कारण अपनी मौत मर गया। सब मिलाकर उसमें आस्था का स्वर ही प्रधान था, यद्यपि अनास्था की कमी नहीं कही जा सकती। आस्था अनास्था की द्वंद में व्यक्ति स्वातंत्र उत्तरदायित्व आदि मूल्यों का अन्वेषण भी किया गया, किंतु सामाजिक व्यवस्था ने व्यक्ति स्वातंत्र्य और उत्तरदायित्व के बीच की खाई कभी पटने नहीं दी। कवियों के उगाए हुए सूरज में रोशनी नहीं आई। सूर्य का स्वागत व्यर्थ चला गया। अहम के विसर्जन की जगत कवि अहम में ही विसर्जित होते गए और फिलिस्तीनी मुद्रा के कारण कविता दीक्षा गम्य हो गई। राजनीतिज्ञों के वादों की तरह कवियों की आस्थाएं भी झूठी सिद्ध हुई। इसलिए सातवें दशक के पहले दौर से अस्वीकार और नकार का स्वर अधिक मुखर होकर आया, पर आगे चलकर आठवें दशक में एक व्यवस्था आई। भारतीय संविधान व्यक्ति स्वातंत्र्य और उसके दायित्व को रेखांकित किया गया, पर व्यक्ति स्वातंत्र्य भ्रष्टाचार का दूसरा नाम हो गया। वर्तमान लोकतंत्र अपनी विसंगतियों के प्रति दिन धुंधलके की ओर बढ़ता रहा। पूंजीवादी और लोकतंत्र की साठगांठ के कारण मनुष्य की रही सही आशा भी क्षीण हो गई। ज्यो ज्यो समय बीतता गया, वर्ग भेद, जाति भेद, भाई भतीजावाद का बाजार गर्माता गया और राष्ट्रीय चरित्र गिरावट की सीमा पार कर गया। फलस्वरूप स्वतंत्रता के पाले हुए सपने का मोहबंध टूट गया। मूल्यहीनता की आत्यंतिक स्थिति में व्यक्ति की अपनी पहचान खो गई और समाज अंधेरे की परतों में खो गया। ऐसी स्थिति में बुद्धिजीवी के पास दो विकल्प थे, एक तो यह कि वह व्यवस्था में अपने को ढाल ले, दूसरा यह कि बदलाव के लिए संघर्षरत हो। व्यवस्था में अपने को ढाल लेने पर बुद्धिजीवी नहीं रह जाता, अतः बदलाव ही एकमात्र विकल्प बचता है। इस बदलाव के प्रति दो दृष्टिकोण दिखाई पड़ते हैं, हताशा की नियति और बदलाव की गत्यात्मकता। इस दशक की मूल प्रवृत्तियां ये ही हैं। दोनों ही को अगर एक नाम देना हो तो आधुनिकता कहा जा सकता है। इस दशक की अगुवाई की राजकमल चौधरी ने, उसमें आधुनिकता अपनी समग्रता में दिखाई पड़ती है। इस समय की अधिकांश रचनाओं पर चौधरी की छाप देखी जा सकती है। चौधरी बिहार के पूर्वांचल के निवासी थे। बंगाल की भूखी पीढ़ी के साथ उनका गहरा संपर्क था। बंगाल के बसाक, मलय राय आदि ने ईश्वर, धर्म और औरत पर खुला हमला किया। उनका मैनिफेस्टो था, गॉड इज सिट, रिलीजन इज मर्डर, रेप, सुसाइड, पॉइजन, फकिंग। ये सभी लोग अमरीकी कवि एलन गिंसबर्ग से प्रभावित थे। हाउल रचना से भी, उसकी दिनचर्या से भी। चौधरी को भी इसी वर्ग में रखना चाहिए। ये गुस्से के कवि थे। अपनी आक्रोशपूर्ण वाणी में ये अपना गुस्सा उतारते रहे। पूर्ववर्ती समस्त मूल्यों और परंपराओं को नकार कर वे अपनी चीखों, जख्मों और यौन विद्रूपताओं को कविता में व्यक्त करते रहे। व्यवस्था जिन मूल्यों को अपना कवच बनाए हुए थी उसे भेदना जरूरी था, लेकिन नकार जब स्वयं कवच बन जाता है तो आक्रोश व्यर्थता की खोल ओढ़ लेता है। राजकमल चौधरी के कंकावती और मुक्ति प्रसंग के अध्ययन द्वारा इस दशक की नब्ज पकड़ी जा सकती है, पर स्वयं कवियों ने राजकमल की मृत्यु को शहादत घोषित कर मूल्यांकन में बाधा पहुंचाई है। चौधरी काव्य के एल्बम में वेश्या, बीमार शहर, सड़े गोश्तों वाली औरतों के संभोग के फूहड़ चित्रों की कमी नहीं है। इसे अभिजात्य विरोधी कहकर चौधरी का समर्थन नहीं किया जा सकता, क्योंकि वे हमें गिरावट की ओर ले जाते हैं। जब नकार स्वयं मूल्य बन जाता है तो वह अश्लील हो उठता है, पर जहां मूल्य रूप से गृहित सेक्स की पवित्रता पर्दाफाश किया गया है, वहां पवित्रता विरोधी रूप मूल्य हो जाता है। कंकावती की भूमिका में वह लिखता है, कंका से विवेकहीन घृणा, आसक्ति, हिंसा, संभोग, ईर्ष्या, क्षमा, विरति, हिंसा, संभोग, आक्रमण, घृणा, ईर्ष्या, पशुत्व, संभोग करते हुए मैंने प्रतिक्षण अपने अहम को, अस्तित्व को प्रमाणित किया है। इस कृति के अधिकांश अनुभव और प्रभाव अस्वीकृतियां हैं। ये प्रवृत्तियां केवल कंकावती की नहीं है, पूरे दशक की हैं। संभोग को 3 बार दोहराया गया है। जाहिर है इसमें संभोगात्मक नोट्स अधिक हैं, किंतु इसके साथ आक्रमण, पशुत्व आदि भी हैं। इसके माध्यम से वह अपने अस्तित्व की पहचान कराता है। मूल्यहीनता के शून्य में अपनी पहचान कराने का वह एक बीहड़ मार्ग है। चौधरी को इस बीहड़ मार्ग से गुजरना पड़ा है। कविताएं यात्रा के अनुभव हैं। इस अनुभव में जहां काव्यंग सटीक बैठता है, वहां की मार भी गहरी होती है। राजकमल एक बिंदु पर ठहरता नहीं, अछोर यात्रा करता रहता है। याद रखना चाहिए, उसकी यात्रा स्थापित मूल्यों के विपरीत होती है। इसमें वह राजक भी हो जाता है, कथ्य और रचना दोनों स्तर पर। मुक्ति प्रसंग एक लंबी कविता है जो सर्जिकल वार्ड में लिखी गई है। इसमें वह अनस्तित्व से मुक्त होकर अस्तित्व पाना चाहता है। क्यों नहीं है मेरे लिए कोई नाम, कोई नदी, कोई चिड़िया, कोई फूल, कोई सिद्धांत, कोई दरख्त, कोई राजनीति दल, कोई जंगल, कोई सांप, कोई गांव, कोई स्त्री, कोई सड़क, कोई संगीत, कोई नशा, कोई प्रेम, कोई घृणा, कोई घर, कोई आंगन, कोई छांव, नीले रंगों में खोया हुआ मृत्यु के मध्य वह संभोगात्मक स्थितियों से भी मुक्त होना चाहता है। इसमें गहरे अवसाद के बिंदु हैं। सबके लिए, सबके हित में अस्पताल चला गया है। राजकमल चौधरी लिखने, पढ़ने, गांजा, फिल्म, सिगरेट पीने, मरने का अपना एकमात्र कमरा बंद करके दोपहर दिन के पसीने, पेशाब, वीर्यपात, मटमैले अंधेरे में लेटे हुए, धुआं, क्रोध, दुर्गंधियां पीते रहने के सिवा जिसने कोई बड़ा काम नहीं किया अपनी देह अथवा अपनी चेतना में इस उम्र तक, इस दशक का यह अकेला कवि है जो मुखौटा नहीं लगता। किंतु मुखौटा न लगाने का अर्थ नंगा होना नहीं है। यह नंगापन की कविता में इतना उभर कर आया है कि वह मूल्यहीनता और अराजकता का सृष्टा हो जाता है। कैलाश वाजपेयी के संक्रांत के में समूची पीढ़ी की अनास्था अभिव्यक्त है। कम से कम वह हिपोक्रेट नहीं है। अपनी अनास्था के प्रति वह पूरा ईमानदार है। इस विशेषता के कारण ही लोगों का ध्यान इस संग्रह की ओर आकृष्ट हुआ। परास्त बुद्धिजीवी के वक्तव्य में वह कहता है, चिल्लाती धूप में, बदहवास रात में, कहीं किसी गटर पर हम खुली पलके सो जाएंगे। हमें अब किसी व्यवस्था में डाल दो। व्यवस्था से उसे लड़ना नहीं है, वह परास्त हो चुका है। फिर भी उसमें एक क्रियात्मक पीड़ा है। रक्त और बादल, सर्प और तितलियां, यज्ञ और वेश्या, सबको एक साथ जोड़ जाता हूं। मुझे कोई और नाम दे दो। प्यार, ईश्वर, इतिहास के अर्थ खो गए हैं। स्वतंत्रता के बारे में वह कहता है, एक सिल की तरह गिरी है स्वतंत्रता और पिचक गया है पूरा देश। व्यर्थता के बोध का ऐसा स्वर पहले पहले संक्रांत में मिलता है। दूसरा संग्रह है देहांत से हटकर। इसमें पहले संग्रह की प्रत्यग्रता नहीं है, फिर भी इसमें पैना व्यंग्य अवश्य है। मैं देखता हूं कुछ लकड़बग्घे संसद से निकलकर पहुंच गए हैं घर रखेल के, और उधर कोई सुकरात रोज अंधा हो जाता है सिखंजे खींचते हुए जेल के। राजीव सक्सेना में व्यर्थता बोध के साथ सक्रियता एक तथाकथित सदीक्षा भी है। लोग भीड़ क्यों है, जलूस क्यों नहीं बन पाते, किंतु इस तरह की सदिच्छाएं भावना मयता के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। जगदीश चतुर्वेदी, श्याम परमार, सौमित्र मोहन आदि अकवितावादी कवि हैं जो राजकमल चौधरी की परंपरा में पढ़ते हैं। जगदीश चतुर्वेदी का एक काव्य संग्रह इतिहास हंस प्रकाशित हो चुका है। भय, अजनबियत, भदेशपन, सेक्स आदि उनकी परिणतियां हैं। प्रतिबद्धता उसके लिए गुनाह है। सुंदर लड़कियों को रस्से में बांधकर कोलतार की तपती सड़क पर घसीटने देखने में उसे सुख मिलता है। स्तनों को दांतों से काटकर थूक देने में आनंद प्राप्त होता है। वह अपने में सादे की क्रूरता और विध्वंस ले आना चाहता है। पर सादे में एक दार्शनिक विजन है, जबकि अकवितावादियों में अराजकता का अंधापन है। अशोक वाजपेयी का संग्रह शहर अब भी संभावना है की भाषा पर छायावादी रंग और आस्था पर बीते दिनों की छाया है। संग्रह की स्थापना ही में सच्चाई के साथ कह दिया गया है, मेरे प्रारंभ में ही मेरा अंत है। इधर सौमित्र मोहन का लुकमान अली और अन्य कविताएं 1980 काव्य संग्रह प्रकाशित हुआ है। इसमें लुकमान अली लंबी कविता है जो अकविता और कविता का निष्कर्षहीन कोलाज बनकर रह गई है। यौन और संभोग कच्छ से हटकर कुछ कवियों ने समकालीनता का अधिक वास्तविक साक्षात्कार किया। यह साक्षात्कार नई कविता के आत्म साक्षात्कार से भिन्न कार्य व्यापार प्रधान है। इन रचनाओं में अपने को ही संबोधित न करके जन से सीधे संवाद किया गया है, इसलिए उनमें बातचीत के टुकड़े अधिक मिलेंगे। इन रचनाओं के पहले के व्यर्थ के आक्रोश को अर्थ मिल गया है। ऐसे कवियों में धूमिल की रचनाएं अपेक्षाकृत अधिक संरचनात्मक अर्थवान है। धूमिल 1936 से 75 का असली नाम सुदामा पांडे और उपनाम धूमिल है। हाई स्कूल की मामूली शिक्षा प्राप्त करने के बाद वे कभी लोहा ढोने वाले मजदूरों के साथ काम करते रहे तो कभी व्यावसायिक फर्म में। अंत में वे आईटीआई वाराणसी में नौकरी कर ली। इन सारे अनुभवों में उन्हें हत्यारे का आतंक बराबर भयभीत करता रहा। वाराणसी के पास उनके गांव में भी वे हत्यारे मौजूद थे, वे कहां नहीं हैं। उनकी कविता हत्यारों के खिलाफ एक लड़ाई है। उनके दोनों काव्य संग्रहों संसद से सड़क तक 1972 और कल सुनना मुझे 1977 में हत्यारों को अनेक रूप रंगों में देखा जा सकता है। अपने दूसरे संग्रह की भूमिका भाषा की रात में उसने लिखा है, युवा लेखन के लिए राजनीतिक समझदारी जरूरी है। बिना इस राजनीतिक समझदारी के आज का लेखन संभव नहीं। क्या बराबरी का दर्जा और आत्महीनता से मुक्ति का रास्ता एक नहीं है? यह आता कहां से है? आर्थिक मुक्ति से, और इसी को सब टुकड़खोर और हरामखोर शब्दों के कुहासे से ढकने की व्यर्थ कोशिश करते रहे हैं। ऐसे में टुकड़खोर भाषाई गुलाम फिर बहकावे में एकजुट हो रहे हैं और अपने भड़वे अंदाज में भटक रहे हैं। साठोत्तरी कवियों के बारे में उसका विश्वास है कि वे शब्दों को खोल कर रखते हैं, लेकिन खेद है कि कवि पुनः शब्दों को गोल करने लगे हैं। इस राजनीतिक समझदारी के अतिरिक्त धूमिल को अकवितावादी सिद्धोनाथों की युगनध मुद्रा से कविता को मुक्त करना था। मुक्ति के इस अभियान में तांत्रिक आकर्षणों और सब साधनाओं से सर्वथा असंपृक्त रहना संभव नहीं था। राजकमल चौधरी के लिए कविता में यदा कदा उसके बाहर भी सब साधकों को मंत्र पाठ सुनाई पड़ता है, पर इसी कविता में वह सब का मुंह शिव की ओर घुमा देते हैं, शिव के रुद्र रूप की ओर। सच पूछा जाए तो उसकी अवधारणा एक ही कविता पहले एक सार्थक वक्तव्य होती है। बीट पीढ़ी की गलाजत से उसे मुक्त करने में मदद करती है। उसे कविताओं की चिंता है, मुझे अपनी कविताओं के लिए दूसरे प्रजातंत्र की तलाश है, इसलिए उसका अधिक जोर इसके बदलाव पर है। अपने यहाँ संसद तेली की वह घानी है जिसमें आधा तेल है और आधा पानी है। चुनाव की पद्धति में वह एक जगह खड़ा कर दिया गया है कि अचानक उसकी चीख निकल पड़ी है, हत्यारा हत्यारा हत्यारा। किंतु इसका समाधान ढूंढते वह कहता है, सुनो तुम चाहे जिसे चुनो मगर इसे नहीं, इसे बदलो। पर क्या भरोसा कि दूसरा भेड़िए का भाई नहीं निकलेगा? इस बदलाव को भी देश भोग चुका है। इसे देखते हुए प्रायः लोग धूमिल पर अराजकतावादी होने का आरोप करने लगते हैं। पर सारी कविताओं को दृष्टि में रखने से जाहिर है कि वह बाएं हाथ का समर्थन करता है। इसी को वह मुनासिब कार्यवाही के अंतर्गत भाषा में आदमी होने की तमीज है कहता है। दूसरे संग्रह में भी वह प्रजातंत्र के विरुद्ध है। इसमें भी किस्सा जनतंत्र है, रोटी और संसद है। इसी में कविता श्री काकुलूम भी है। इसे लगता है अभी भी उसे प्रजातंत्र के विकल्प की तलाश है, पर इस संग्रह में पहले संग्रह का आवेग है और तेवर नहीं है। वस्तु के बदलाव के साथ धूमिल ने कविता को नई भाषा और नए मुहावरे दिए हैं जो विपक्ष या पक्ष प्रस्तुत करने में पूर्णतः समर्थ है, क्योंकि बनिया की भाषा तो सहमति की भाषा है। बनिया भाषा के निषेध के साथ लोरियों की गंधवती भाषा भी उसे ग्राह्य नहीं है, और न रुमान की हरी भरी शब्दावली, लहलहाती हुई फसलें, बहती हुई नदी, उड़ती हुई चिड़िया, यह सब सिर्फ तुम्हें गूंगा करने की चाल है। धूमिल की भाषा में सचेतता है, बदलाव का उपक्रम है और कर्म की प्रेरणा है, इसलिए वह शब्दों का चुनाव अपने गाँव के खेत खलिहानों के सख्त चेहरों, तनी हुई मुठ्ठियों, छोटी जातियों के घुटते हुए जीवन, राजनीतिक विसंगतियों, फुटपाथों, मोचियों, भंगियों को का चुनता है, उसके शब्दों के चुनाव में विरुद्धों का सामंजस्य नहीं संतुलन मिलता है। जैसे रामनामी और रंडियों की दलाली, मैकमोहन रेखा और सौ, क्रांति और असंग लोग आदि बिंबों का उपस्थापन भी इसी आधार पर किया है। एक अनाघ्रात बिंब का उदाहरण लीजिए, कमरे के अपने एकांत में जूते से निकाले गए पांव सा महकता हूँ, यह अनाघ्रातता शब्दों को नाम देने में भी दिखाई पड़ती है। भूख से रिरियाती हुई फैली हथेली का नाम गया है और भूख में तनी हुई मुट्ठी का नाम नक्सलवाड़ी है। गया संज्ञा क्रिया होकर और अर्थवान हो जाती है। आंतरिक तुकों और चौंकाने वाले लटकों के बावजूद भाषा कर्म की एक कठोरता सर्वत्र दिखाई पड़ेगी। लीलाधर जगुड़ी को धूमिल से अलग करके नहीं समझा जा सकता। उनके चार कविता संग्रह नाटक जारी है। इस यात्रा में रात अब भी मौजूद है, बची हुई पृथ्वी प्रकाशित हो चुकी है, पर धूमिल की छाया से बचकर मौलिक हो पाना उनके लिए संभव नहीं हो सका है। प्रजातंत्र के प्रतिपक्ष में कविता लिखना एक रूढ़ी हो गई है। इसकी शुरुआत रघुवीर साहब, सर्वेश्वर, राजकमल की रचनाओं में ही हो जाती है। धूमिल ने इसे अत्यंत सशक्त ढंग से प्रस्तुत किया। जगुड़ी लिखते हैं, यहाँ से वहां तक चुनाव का संकट लेकर पेट और प्रजातंत्र के बीच आदमी दरार की तरह खड़ा है और बवंडर हर दरवाजे पर पर्दे की तरह पड़ा है। यदि जगुड़ी के स्थान पर धूमिल कहते हैं लिख दीजिए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। धूमिल ने भाषा और शब्दों की शक्ति और छल के बारे में बहुत कुछ कहा है, पर जगुड़ी की तरह शब्दों को बुलेट कहकर कागजी क्रांति ले आने की चेष्टा नहीं किया। जगुड़ी को अपनी जगुड़ी से मुक्त होना है। आखिर संग्रह इस तरह का संकेत देता है। लीलाधर जगुड़ी का संग्रह है, नाटक जारी है। इसमें भी लोकतंत्रीय नाटक को व्यंग्यात्मक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। धूमिल के किंचित प्रभावित होते हुए भी जगुड़ी के पास मीठी मार करने वाली भाषा है, यद्यपि इसमें चुस्ती की कमी है। जगुड़ी में विषय तथा उनके प्रस्तुतिकरण में अपेक्षाकृत अधिक वैविध्य है। विकल कमलेश, चंद्रकांत देवताले, विष्णुचंद शर्मा, मणि मधुकर, वेणुगोपाल, आलोक धनवा, विनोद शुक्ल आदि इसी पीढ़ी के कवि हैं। नवगीत, नई कविता की तरह गीतकारों ने अपनी पहचान बनाने के लिए नवगीत का आंदोलन चलाया। इस आंदोलन में मुख्य रूप से वे लोग शरीक हुए जो नई कविता नहीं लिख पाते थे या नई कविता में विफलता प्राप्त करने के उपरांत पुराने गीत लोक में लौटने के लिए बाध्य थे। ग्राम गीतों के कुछ टुकड़े, गांव की भाषा, गीतों की लय आदि को पकड़ने के साथ आधुनिकता का रंग भर कर इसे नवगीत कहा जाने लगा, किंतु नवगीतों की आंतरिकता या नव रोमान का तालमेल नवगीत के साथ नहीं बैठ पाता। नई कविता ने जिस तरह या जिस सीमा तक अपनी पूर्ववर्ती काव्य परंपरा से अपने को अलग कर नए कथ्य नए रूप विन्यास को अपनाया है, उस सीमा तक नवगीत अपनी पूर्ववर्ती गीत परंपरा से नहीं अलग गा सका है। अतः प्रयास करने पर भी उसका स्वर आधुनिक नहीं बन पाता। यह प्रेम और प्रकृति के दो छोरों तक सीमित रहकर स्थगित हो गया है। यूं तो कहना चाहिए कि हिंदी काव्य परंपरा का प्रवर्तन ही गीतों से हुआ। कबीर, विद्यापति हिंदी के प्रारंभिक गीत कवि हैं। भक्त कवियों में प्रायः प्रत्येक ने पदों की रचना की। पुनर्जागरण काल में भारतेंदु ने गीतों में लोक तत्व का नया सम्मिश्रण मिलने लगता है। स्वच्छंदतावाद काल में प्रसाद निराला पंत महादेवी ने गीतों की प्रचुर रचना की। निराला के परवर्ती गीतों में लोक धुन का पर्याप्त समावेश है। इस शताब्दी के चौथे दशक में बच्चन, नरेंद्र शर्मा, अंचल और केदारनाथ अग्रवाल ने प्रसाद, पंत, महादेवी आदि से अलग बोलचाल की भाषा में गीत सृष्टि की, किंतु भाषाई सादगी के बावजूद इनमें कैसोर भावुकता का प्राधान्य था। नवगीत का आरंभ कुछ लोग 20 से ही मानते हैं, कुछ लोग 50 के बाद से। वस्तुतः स्वच्छंदतावाद काल के गीत में जो आभिजात्य और परिनिष्ठता देखी जाती है वह बाद के गीतों में नहीं मिलती। निराला के परवर्ती गीतों में यह आभिजात्य परंपरा टूटती है। तार सप्तक के कवियों में अज्ञेय ने प्रारंभ में बहुत से गीत लिखे हैं। गिरजा कुमार माथुर तो समग्रता गीतकार हैं। जैसे पहले ही कहा जा चुका है, नई कविता के वजन पर गीतों को नवगीत की संज्ञा मिली। दूसरे और तीसरे सप्तक के कवियों में नरेश मेहता, धर्मवीर भारती, हरिनारायण व्यास, कुंवर नारायण, रघुवीर सहाय, केदारनाथ सिंह, विजय देव नारायण शाही आदि ने गीतों से ही कविता लिखना प्रारंभ किया, पर इन्हें गीतकार के रूप में नहीं स्मरण किया जाता, क्योंकि मूलतः ये लोग नई कविता के कवि हैं। इनकी परंपरा में अपने को जोड़ते हुए नवगीतकारों ने स्वतंत्र व्यक्तित्व के निर्माण का दावा किया है। शंभुनाथ सिंह, नीरज, वीरेंद्र मिश्र, जगदीश गुप्त, रामदरस मिश्र, ठाकुर प्रसाद सिंह, रविन्द्र भ्रमर, सलम श्री राम सिंह, सोम ठाकुर, हरीश मादानी, नरेश सक्सेना, दिनकर, सोनवलकर आदि नवगीतकार हैं। शंभुनाथ सिंह की काव्य यात्रा काफी लंबी है। छायावादी संस्कारों से चलकर ये नए संस्कारों को समेटे हुए पुनः नवगीतों की सीमा तक पहुंचते हैं। वे मूलतः गीतकार हैं। उनके प्रारंभिक गीत संग्रहों रूप रश्मि, छायालोक में रूप रुमानी, रूपाशक्ति और तरल प्रणयोद्गार हैं। उदयाचल में वे उपरल्य स्तर की प्रगतिशील चेतना से आक्रांत हैं। दिवालोक में वे दिन की उष्मा का अनुभव करते हुए लोक चेतना के निकट पहुंचना चाहते हैं। इधर हाल में उन्होंने कुछ व्यंग्य दर्दपूर्ण गीतों की रचना की है, जिनमें अनुभूति का तीखापन काफी गहरा हो उठा है। शंभुनाथ सिंह की भाषा में अद्भुत लोच और मादल लय, लोकधुन, आंचलिक शब्दावली, विरोधाभास एक दूसरे में रच पचकर उनके गीतों को संश्लिष्ट बना देते हैं। उनके स्वर का पारस स्पर्श पाकर गीतों की प्रभावान्विति और भी बढ़ जाती है। नवे दशक की कविताएं। इस दशक के मुख्य कवि हैं राजेश जोशी, अरुण कमल, मंगलेश डबराल और असद जैदी। इन कवियों में जोशी और अरुण कमल प्रतिबद्ध कवि हैं। डबराल में पहाड़ी परिवेश जीवन की त्रासदी है, जैदी में करुणा की टीस है। इन कवियों के प्रथम काव्य संग्रह एक दिन बोलेंगे पेड़, अपनी केवलधार, पहाड़ पर लालटेन और बटने में भावी कविता की सशक्त संभावनाएं दिखाई पड़ी। वे सभी कवियों का दूसरा काव्य संग्रह उनकी संभावनाओं को बी को पीछे ठेल देते हैं। इस प्रकार उत्तर स्वच्छंदतावाद काल यहीं पर समाप्त होता है।